أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم الكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود پڑھے محمد. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے موضوع بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید کی اس آئے مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد ایک اور حکم فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج کا جو عنوان ہے وہ ہماری زندگی، پوری زندگی سے مربوط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد انہیں تمام وہ سہولتیں فراہم کی ہیں کہ وہ کمال کی منزل تک پہنچا، لیکن کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ان بہت ساری چیزوں میں جو اہم ہے، یا اہم بھی ہے، مہم بھی کہہ لیں، اہم بھی کہہ لیں، کہ اگر ہم اس ایک کا مقابلہ کریں جو ہماری ساری زندگی میں ہر قدم پہ ہمارے ساتھ ان معنوں میں ہے کہ جہاں بھی آپ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گی، شیطان آپ کو بھگائے گا. تو اب ہم پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. دیکھیں، نمبر ایک، اللہ نے انسان کو خلق کیا. دو، پروردگار عالم انسان کو چاہتا ہے کہ انسان کمال حاصل کرے. اس نے کمال تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں انسان کو عطا کر دی ہیں، کہ وہ ان کمال تک پہنچنے کے لیے کتنا جہاد کرے گا تو وہ اس مقام تک پہنچے گا. یہ بھی ایک بات. نمبر تین یہ ہے کہ یہ جو انسان کا جہاد ہوگا، جو مسلسل چلتا ہوا آئے گا، وہ کون ہے جس سے انسان کو مسلسل جہاد کرنا؟ وہ ہے شیطان ہے. اس میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب آئیے ہم پہلے ایک دنیاوی مثال آپ کو دے دیں. دیکھیں، دنیا کے اندر بھی انسان، اگر آپ دیکھیں کہ جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ انسان آپ کو ایسے ملتے ہیں، کچھ افراد ایسے ملتے ہیں کہ جو 10 ٹاپ میں ہوتے ہیں، یا ٹاپ 5 میں ہوں گے، یعنی 5 دنیا کے بہترین ڈاکٹر، 5 دنیا کے بہترین انجینئر، 5 دنیا کے بہترین کرکٹر، 5 دنیا کے بہترین اسپورٹس مین. مثال لے لیں، 5 بہترین افراد کوئی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے. اور آپ اگر ان کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے، ڈاکٹر کی میں مثال لے لوں، انجینئر کیا مثال لیں، تو کیا ہوگا؟ ان کی زندگی میں انہوں نے ایگزام پاس کیے ہوں گے. وہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا کے 5 اگر ٹاپ کے آپ نام لیں تو انہیں کتنے سختیاں سے گزرنا ہوگا شروع میں، پھر اس وقت کتنے پیپر دیے ہوں گے، کتنے امتحانات دینے کے بعد وہ اس مراحل تک پہنچے ہوں گے. یعنی دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اگر آپ کو کمال تک پہنچنا، جسے دنیا کمال کہتی ہے، یا دنیا جسے کہتی ہے کہ یہ ایک بہترین ڈاکٹر ہے، ایک بہترین انسان ہے، یا بہترین کسی بھی فیلڈ میں، آپ ڈاکٹر کے اندر بھی بہت ساری فیلڈ ہیں، میڈیکل کے اندر کوئی ایک فیلڈ نہیں ہے، اس کے اندر بھی مختلف فیلڈ ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یا دنیا کے 5 بہترین وہ فرد جو کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے ان کا معیار کامیابی کا جو بھی ہوگا، ابھی اس میں ہم بحث نہیں کر رہے، کہنے مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر انسان کسی کامیابی کو حاصل کرتا ہے، کسی مقام تک پہنچتا ہے، تو اس کو امتحانات دینے پڑتے ہیں. وہ دنیا کے امتحانات ہیں، پیپر دینا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، انٹر، میڈیکل، پھر چار سال یونیورسٹی، پھر اس کے بعد بیچلر، بیچلر کے بعد پھر ماسٹرس کے بعد، اور آگے نکلتے نکلتے پڑھتے پڑھتے رہے. وہ اپنے ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی بھی رکھتے رہتے ہیں. بالآخر وہ ایک امتحانات محنت کرتے کرتے جب ان کا نام شروع ٹاپ پانچ افراد میں آتا ہے، کبھی دو افراد میں آتا ہے، کبھی کہتے ہیں دنیا کا بہترین ڈاکٹر یہ، دنیا کا بہترین انجینئر یہ، دنیا کا بہترین فرد کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ لے لیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی امتحانات ہیں، جس کو امتحان پاس کرنے کے بعد ایک مقام دے. اسی طرح روحانیت میں بھی یہی ہے. کمال تک انسان، جو خدا انسان کو چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے، تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو پیپر دینے ہوں گے، آزمائش تھے، امتحانات ہیں. وہ امتحانات کیا امتحانات ہیں؟ کہیں مال کی قربانی دینی ہوگی، کہیں انسان کو اپنے خواہشات نفسانی کو مارنا ہوگا، اور یہ خواہشات نفسانی کو مارنا اور شیطان سے مقابلہ یہ آخر تک چلتا رہے گا. اور اس میں ہمارے پاس جو نام آئیں گے آپ دیکھیے گا، ہمارے پاس روحانی شخصیتوں بھی نام ہیں. آپ نے معروف شخصیت کا نام کون ہے اس میں؟ آغا بہجت کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ بہاؤدینی کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ کشمیری بہت معروف تھے، آغا قاضی مشہور ہے، نجف میں ان کی قبر ہے بعد السلام میں. تو یہ وہ افراد ہیں. اب ہم جب دنیا کے روحانی شخصیتوں کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کے نام بھی ہیں. شیخ صدو کا آپ نام دیکھیں، علامہ ہلی کا نام دیکھیں، علامہ مجلسی کا نام دیکھیں، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ. یعقوب غلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی، کتنی محنت کے بعد 20 سال، کہتے ہیں یعقوب غلینی اپنے گھر سے باہر رہے ہیں 20 سال، تب جا کے انہوں نے اصول کافی میں جو احادیث جمع کی معصومین کی، 20 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد ان حدیثوں کو جمع کیا اور اصول کافی لکھی. یعنی آج اگر آپ ہم نام دیکھتے ہیں کہ شیعوں کے اندر تاریخ تشیع کی جب بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کریں گے، تو اصول کافی کی بات آئے گی. جب اصول کافی کی بات آئے گی تو یعقوب غلینی کا نام سر فہرست آئے گا. تو یہ کیسے پہنچے اس مقام پر؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کے واقعات میں نے خود پڑھے، یہاں پر پڑھے، درس میں مختلف جگہوں پہ پڑھے. ایک مقام حاصل ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، آج سے 150 سال پرانے مرجم مجھ تھے. اگر ہم ان جب ان افراد کی بھی ہسٹری دیکھتے ہیں تاریخ میں، تاریخ تشیع کے اندر، کہ روحانی مقام کے اندر ان کا ایک نام ہے، تو جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی آزمائش دی ہے، اپنی خواہشات کو مارا ہے، شیطان کا مقابلہ کیا ہے. تو اب ہمیں اپنی زندگی میں بھی کہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم شیطان سے کیسے مقابلہ کریں. ممکن ہے کوئی سوال کرے مولانا صاحب، شیطان سے کیسے مقابلہ کریں، کیا کریں؟ اب قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں جو شیطان سے متعلق ہیں، ان کو آپ پڑھیں. کتاب کا حوالہ میں بتا دیتا ہوں، میزان الحکمہ میں جلد نمبر 5 میں اگر آپ جائیں تو وہاں شین میں آپ کو بہت آسان ہے، شین میں، حروف شین میں جائیں آپ، دیکھیے اس میں آپ کو صفحہ نمبر جو ملے گا تو شیطان کے متعلق اس میں بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی، کہ انہی معلومات کتاب سے میں نے کچھ مطالب جمع کیے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صرف ترتیب دی ہے میں نے اپنے حساب سے کہ بہت ان روایتوں کو جمع کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، کہ دیکھیں اگر ہم اس میں پہلے ایک اصول بنائیں گے. سب سے پہلے مقدمہ یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگوں نے نام پیدا کیا ہے دنیا کے امتحانات دے کر، اسی طرح روحانیت کے اندر بھی خدا نے وہ تمام چیزیں ہمیں دی ہیں کہ جس سے ہم اس معراج، انسان کے اس معراج تک، اس کمال تک پہنچے جو خدا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ شیطان سے مقابلہ. اب سوال یہاں پر یہ آئے گا مولانا، اب وہ کیا کام ہے؟ ابھی جو میں کچھ چیزیں بیان کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، جتنا میں جمع کر سکا کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ کم سے کم یا 8-10-12 چیزیں ہیں کہ اگر انسان انشاءاللہ اس کو کنٹرول، اس پہ انسان کنٹرول کرے گا، انسان اس پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ شیطان کو شکست دے سکے گا. تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا اصول یہ کہ قرآن نے ایک اصول خود بیان کیا سورہ فاطر میں. سورہ فاطر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور یہ کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. سورہ فاطر آیت نمبر 6. کیا اصول ہے؟ قرآن نے ایک اصول کیا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا. تو پہلا مرحلہ کیا ہو گیا؟ सबसे पहला मरहला ये होगा कि हमें अपना, हमें ये पता हो कि हमारा दुश्मन है कौन, और ये ऐसा दुश्मन है कि जो नजर नहीं आता लेकिन है। ये बात तयशुदा है कि दुश्मन है, और ये भी तयशुदा है, तयशुदा बात है कि वो इंसान को गुमराह करता है, उसके असबाब फराम करता है। तो पहला उसूल क्या बना के कुरान की निगाह में कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी उसे अपना, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा कानून क्या है, सूरह बकरा की आयत नंबर 208 जिसको मैंने तलावत शुरू में तलावत की, परवरदिगार ने क्या कहा, ए ईमान लाने वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, एक। उसके बाद दूसरा उसके बाद दूसरा कानून क्या बयान किया, शैतान के कदम ब कदम ना चलो। तो पहला कानून दुश्मन, ये हमारा दुश्मन है, तुम भी इसे अपना, एक। दूसरा कानून क्या हुआ, तुम उसके कदम ब कदम ना चलो। इसका क्या मतलब है कि कोई तो अफराद होंगे जो उसके कदम ब कदम चलने वाले, तभी खुदा ने कहा कि तुम इसके कदम ब कदम ना चलो क्योंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये दो चीजें आपने उसूल, दो उसूल जिसे हम कहते हैं, दो उसूल हो गए। आपको ये पता चल गया दुश्मन कौन है, और ये पता चल गया कि इसके कदम ब कदम नहीं चल। अब आते आगे, नंबर एक। नंबर तीन, नंबर तीन में क्या है, नंबर तीन में है इससे इबरत हासिल करो। शैतान से क्या हासिल करनी है, इबरत हासिल करनी है। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने शैतान के साथ जो कुछ किया, फिर फरमाया जो कुछ किया इससे इबरत हासिल करो, क्योंकि आप इसकी वजह बताते हैं कि इसकी जो तवील इबादतों और फिर भरपूर कोशिशों पर ये जो शैतान ने देखे तवील इबादतें की और भरपूर जो उसने कोशिशें की, जो भी किया उसने, एक अमीर फरमाते हैं कि एक लम्हे का, एक घड़ी, एक लम्हे का जो गुरूर था उसने उस तमाम चीज़ों पर पानी फेर दिया। अब फिर फरमाते हैं अमीर मोमिनीन, उसके बाद फरमाया हालांकि उसने जो 6000 बरस तक जो पता नहीं, वो जो 6000 बरस जो उसने इबादत की उसका पता नहीं कि वो दिन वो दुनिया के दिन थे या आखिरत के दिन थे। कहा जाता है ना आखिरत के दिन तो तुला नहीं होंगे, दुनिया के मुकाबले में आखिरत के दिन तुला नहीं होंगे। अब आप देखिए, यानी तीसरी चीज़ क्या हमारे सामने है कि इस अमीर फरमाते हैं इससे इबरत हासिल करो। वो इबरत क्या है, इबरत ये कि इसने हजारों साल इबादत की, 6000 साल जो मारूफ लिखा है, अमीर फरमाते हैं, अमीर फरमाते हैं ये मालूम भी नहीं है कि दिन ये 2000-6000 साल इबादत है, ये जो दिन थे ये दुनिया के थे या आखरत के थे, और एक लम्हे में, एक लम्हा नहीं था कि उसने गुरूर तकबूर किया, उसका नतीजा क्या निकला, सारी इबादतें। तो ये तीसरी चीज़ इस शैतान से जो इबरत लेनी हुई कि इबरत है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी गुरूर तकबर ना करे। खुद एक मौजू इंशाल्लाह फिर कभी बयान करेंगे कि गुरूर तकबर इंसान के अंदर आता कैसे है और इंसान इसे अपने आप से कैसे बचे। लेकिन यहाँ पे हमारा मौजू क्या, हम कोशिश करेंगे आज के उन चीज़ों को बयान करें कि हम शैतान से कैसे अपने आप को बचाएं। वो कौन से शैतान की हरबें, शैतान एक हरबा शैतान का क्या हो गया, गुरूर तकबर है जो उसने किया और उसका नतीजा भी सामने आ गया। नतीजा क्या था, खुदा की बारगाह से निकाला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा को गुरूर पसंद नहीं है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी से गुरूर को निकालता। और अगर कभी कोई गुरूर आ रहा है किसी भी लिहाज से, इंसान ये चीज़ इंसान को खुद चेक करनी पड़ेगी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कहीं गुरूर तो नहीं आ रहा, कभी मैंने ऐसी बात कर दी, कोई बात ऐसी मैंने कर दी जिससे मुमकिन है कि आप ये समझ रही हो कि इसमें गुरूर नहीं है, लेकिन मुमकिन है सामने वाला इस बात का इजहार करेगा कि ये बात गुरूर की है। जैसे आपने फर्श करें कह दिया कि ये 20 साल का मेरा मुताला है, ये 15 साल मैं एक मदरसे में गई थी, 15 साल मैंने मदरसे में पढ़ा है, मुमकिन है कि आपके मैं तो एक बात करूं कि 20 साल का मेरा मुताला है और 20-15 साल मैंने मतलब मदरसे में पढ़ा है, लेकिन सामने वाले क्या कहेगा, ये गुरूर कर रही है, 15 साल मदरसे में अपना गुरूर दिखा रही है, मैंने 15 साल मदरसे में पढ़ा, या 20 साल का मेरा मुताला है। ये एक जुमला है किसी आलिम का, इसलिए मैंने इसकी मिसाल दी है। मैं वो साल की तादाद नहीं बता रहा, मुमकिन है कोई पहुंच जाए, किसी आलिम से कहा, किसी ने कहा मतलब पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा कि मसलन कहा कि ये हमारा 40 साल का मुताला है। उन्होंने जवाब दिया कि जो हम आपसे बात करें 40 साल का मुताला है, तो फिर फला आलिम जो भी आलिम थे, जो मुश्तहिद तो नहीं थे लेकिन बड़े आलिम थे, तो उन्होंने इस जुमले से कहा ये जो कह रहे हैं कि 40 साल का मुताला है, कहा इससे गुरूर की बू आती है। आप सोचिए गुरूर कैसा है। तो अब हम अपनी जिंदगी के अंदर गुरूर और तकब्बुर को निकालना पड़ेगा। पहला यानी शैतान ने जो पहला मरहला, जो उसकी पहला मरहला था, जो इतनी इबादत की उस पर एक लम्हे का गुरूर किया, खुदा से कहा मैं इस आदम को सजदा नहीं करूंगा, अपनी इबादत पे गुरूर किया, उसका नतीजा 6,000 साल की इबादत खत्म। अब आप सोचें कि अगर हमारी इबादतें कितनी है, कितने साल की इबादत है, कितना हमारा अमल है, कितनी हमारी नमाज और दुआएं हैं, कि अगर हमने ज़रा सा भी अगर गुरूर किया खुदा की बारगाह में तो सब के सब खत्म हो जाए। तो तीसरा दर्स क्या हुआ, इबरत। इबरत के अंदर कौन सी चीज़ शामिल है, यानी शैतान से इबरत लो, इबरत से फिर उसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो तशरीह की वो क्या तशरीह की कि शैतान ने क्या किया गुरूर, और उसका नतीजा भी बता दिया कि गुरूर के नतीजे में क्या हुआ, इबादतें ठीक है। नंबर 4, चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है जब अल्लाह ताला ने इबलीस से कहा आदम को सजदा करो, वो गुफ्तगू है। अल्लाह ने इबलीस से कहा आदम को सजदा का जब हुक्म दिया तो इसने क्या कहा, इसने कहा परवरदिगारा, परवरदिगारा मैं तेरी इज्जत और जलाल की कसम, उसने कहा तेरी इज्जत और जलाल की कसम अगर तू मुझे आदम के सजदे करने से माफ़ कर दे, तू मुझे आदम के सजदे करने से रोक दे, यानी तू कह रहा है कि आदम को सजदा कर, मैं ये चाहता हूँ कि आदम को सजदा ना करूँ, तू मुझे इससे रोक, बाज़ रख, रोक, तो क्या करूँगा मैं, अगर तू मुझे इससे रोकेगा तो क्या होगा, तो मैं तेरी ऐसी इबादत करूँगा जैसी किसी ने भी तेरी इबादत। शैतान का एक दावा है, क्या कहता है, खुदा से कह रहा है एक हुक्म, यानी खुदा के एक हुक्म की नाफरमानी, कह रहा है कि तू ये हुक्म दे रहा है मुझे कि मैं आदम को सजदा करूं, मैं कह रहा हूं परवरदिगारा, मैं कहता हूं खुदा तू मुझे आदम के सजदा करने से माफ कर दे, तो मैं तेरी इबादत ऐसी करूंगा कि जैसी किसी ने नहीं की थी। अब खुदा का जवाब सुनिएगा, यह हमारा खुदा का जो जवाब है वो हमारा मौजू है कि चौथी चीज क्या बनेगी, खुदा ने क्या जवाब दिया सुनिए, परवरदिगार ने कहा, पर खुदा ने कहा मैं तो चाहता हूं कि मेरी इबादत वैसी हो जैसी मैं चाहता हूं। क्या कहा खुदा ने, दोबारा, हाँ यानी आप ये एक जुमला बहुत अहम है, यानी खुदा चाहता है कि बंदा वैसी इबादत के जैसी मैं चाहता हूं, बंदा खुदा ये नहीं चाहता जैसी तुम इबादत चाहो वैसी करो, ये नहीं है। आज हम अपने माशरे में क्या करते हैं, आइए अपने माशरे की तरफ, यानी अगर हम बहुत सिंपल सी बात है, आज अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, इबादत ऐसे नहीं ऐसे करो, हम कहें परवरदिगार हमारा दिल चाहता हम ऐसे करें, है ना, बहुत सी मिसाल है शादी ब्याह के अंदर, बहुत सी रसूमात ऐसी हैं जिंदगी के अंदर, बहुत सी रसूमात ऐसी हैं, बहुत सी महफिलें ऐसी हैं, हम आए उसमें, हम अपनी जिंदगी में इस जुमले को अपनी जिंदगी में देखें कहाँ पर ये जिंदगी में हमारे जुमला कहाँ काम आता है, पूरी जिंदगी इसी जुमले पर है। परवरदिगार ने शैतान से कहा कि मैं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बात ऐसे जैसे मैं चाहता हूँ, यानी एक कानून क्या बन गया, कानून ये बना अगर जो शख्स अपनी मर्जी से जो इबादत करता है इसका मतलब वो शैतान की इबादत है, क्यों शैतान ने भी कहा परवरदिगार मैं चाहता हूं मैं ऐसी इबादत करूंगा, मैं तेरी ऐसी इबादत को आज तक किसी ने नहीं की तेरी इबादत ऐसी, मैं ऐसी इबादत करूंगा, खुदा ने जवाब में क्या कहा, मुझे ऐसी इबादत चाहिए नहीं। अब आप सोचिए अपनी जिंदगी में इबादत, जिंदगी गुजारना, महफिलें, दुआ के प्रोग्राम, मजालिस, तमाम चीज़ें, शादी ब्याह तो बिलमारूफ। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे आया अल्लाह की इबादत कितनी है, और शायद ये जुमला कहते हुए भी कि शैतान की बात हम कितनी मानते हैं, या शैतान हमें कितना गुमराह करने के रास्ते पर है। कितने ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ये काम हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और कितने ज़िंदगी के वो काम में जो हम कहते हैं परवरदिगार हम तेरी मर्ज़ी से करेंगे। देखिए बहुत सी जगह पे हो सकता है, नमाज में आपके क्या मर्ज़ी चलानी, रोज़े में आपके क्या मर्ज़ी चलानी अपनी, जैसे खुदा कहता रख लो रोज़ा। शायद किसी ने ये नहीं कहा होगा परवरदिगार 12 घंटे का रोज़ा मैं 14 घंटे का रख लूँ, नहीं कहा होगा किसी ने शायद, या नमाज में कहा होगा 17 रकात है परवरदिगार कभी 18 पढ़ लूँ 19 पढ़ लूँ, कभी नहीं कहा होगा। ये वो मवारिद है कि जहाँ पे कभी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ज़िंदगी में जो दूसरी ज़िंदगी के जो दूसरे हैं मराहिल हैं उसमें ये ज़रूर होगा कि परवरदिगारा इसमें हम अपनी मर्ज़ी चला लेते हैं, परवरदिगारा इसमें हम तेरी बात नहीं मानेंगे। खुदावंदा ये बात हमारा दिल चाहता है कि हम ये रस्म और रिवाज अपनी मर्ज़ी से करें, अपने ख़ानदान की मर्ज़ी से करें, अपनी मर्ज़ी से करें या बच्चों की मर्ज़ी से करें। हमारे पास तो एक ऑप्शन ये होता है, अगर कोई ऐसे महफिल में जाए या ऐसे प्रोग्राम में जाए तो क्या कहते हैं, अगर वो एतराज़ कर भी देता है तो क्या कहते हैं, क्या जवाब मिलता है, बच्चों की वजह से। और उन्हें ये याद नहीं आता कि ये बच्चा कितनी मन्नतों से पैदा हुआ, ये याद नहीं आता कि ये बच्चा अल्लाह ने दिया, ये याद नहीं आता कि बच्चों को कितनी मेहनतों से पाला है उसके बाद, और यही बच्चा खुदा की नाफरमानी का अगर सबब बन जाए। तो लिहाजा ये एक कानून बन गया कि अपनी मर्जी जहां पर होगी ये फैसला हो जाएगा, ये इबादत का वो हिस्सा है जो अपनी मर्जी वाला, वो किसका है, शैतान का। किस सब बोले तो पता चले किसका है,
शैतान का।
हाँ, तो चार कानून अब तक हमने आपके सामने बयान किए। पहला कानून क्या था, एक दो तीन इबरत, चौथा क्या था, अब आपने इस एक जुमले को, इस एक जुमले को भी और वैसे तमाम इंशाल्लाह पूरे दर्श को बनाए जुमला, ये जुमला इससे कह रहा हूँ कि ये जुमला या जैसे दूसरा इबरत है, तीसरा इबरत है, चौथा जो दूसरा शैतान के कदम ब कदम ना चलो, अगर आप देखेंगे तो वो कदम ब कदम ना चलो, ये तमाम चीज़ें उसी के जिम्मे सारी है। और शैतान ऐसे बहकाएगा जैसे आपको पता भी चलेगा। एक वाक्य सुना दूं, आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब में लिखा है, हवाले से पढ़ रहा हूँ। आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब है बिखरे मोती, उर्दू में तर्जुमा हुआ है बिखरे मोती के हवाले से, फारसी में नहीं मालूम क्या नाम है, उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ है बिखरे मोती, गालिबन उसी में पढ़ा था, बहुत पुराना किस्सा है लेकिन सुना देते हैं आपको भी। किस्सा इस तरह से कि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह की राह में खर्च करो इतना सवाब है, अल्लाह की राह में खर्च करो इतना सवाब है, इतना सवाब है, ये सब चीज़ें जी, हाँ शैतान की खाला नहीं, थोड़ा सा और आगे जा कर एक स्टेप आपने आगे बढ़ा दी, पीछे वो क्या है, वो इस तरह है कि वो जब मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कुछ अफराद थे उनमें, कुछ दोस्त अफराद थे, कुछ सब सुन रहे थे, एक शख्स उसमें से अपने दोस्तों से कहा, मैं अच्छा मौलाना साहब ने ये भी कहा कि अगर तुम नेक काम करने जाओगे तो शैतान तुम्हें बहकाएगा, यानी शैतान तुम्हारे रास्ते में आएगा, ये भी जुमला साथ उन्होंने कहा कि शैतान बहकाता, जैसे रवायतों में आप नेक काम करेंगे शैतान बहकाएगा। इसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं देखता हूँ शैतान आता है नहीं आता, अभी मौलाना साहब ने तो दर्श में कहा है कि शैतान बहकाएगा और शैतान आएगा। अब अपने घर आया और घर आने के बाद अपनी जौजा से कहा कि भाई अल्लाह की राह में मौलाना साहब ने कहा ये दो इतना इतना सवाब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब सामान अल्लाह की राह में दे दें। तो उसकी बीवी ने कहा कि अल्लाह की राह में सब कुछ दोगे तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं देना, यहाँ से भगा दिया उसे, कुछ भी नहीं अल्लाह की राह में। जो बाहर निकला दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, शैतान को देखा, कहा शैतान को नहीं देखा, उसकी माँ को कम अज़ कम ज़रूर देखा। तो ये एक मिसाल उन्होंने दी समझाने, तमसील है कि कभी कभी शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को बहकाएगा, उसके हथियार क्या हैं, वो भी आएंगे आज की तकरीर में इंशाल्लाह कि किस कौन कौन से ज़रिए हैं जो उसके बैग आने के। खैर, यहाँ तक पहुँच गए चार चीज़ें हमने आपके सामने अब तक बयान की। अब आते हैं पांचवी चीज़ के ऊपर। पांचवी चीज़ है, हाँ, शैतान से मुकाबले का तरीका। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने जो हश्याम को जो नसीहतें की हैं, उन नसीहतों में एक नसीहत है कि जो आपको शैतान को बहकाने के जब शैतान बहकाएगा तो अगर वो चीज़ आपके पास होगी तो नहीं बहका सकता। वो क्या चीज़ है, वो अब रिवायत पर बयान होती है। इमाम फरमाते हैं जो हश्याम को नसीहत फरमा, इन में से जो भी है कि शैतान तुम्हारा शदीद दुश्मन है, शैतान तुम्हारा शदीद दुश्मन, यानी तुम शैतान से शदीद दुश्मनी करो, अच्छा, ताकि जितना तुम इसका डट कर मुकाबला करने के जद्दोजहद करते हो वो तुम्हारी हलाकत के लिए तुमको तुमसे ज़्यादा जद्दोजहद ना कर पाए। यानी क्या फरमा रहे हैं, शैतान भी कोशिश करेगा, उसका डट के हमें मुकाबला है, वो कोशिश करेगा आपको गुमराह करने की, आप डट के मुकाबला करेंगे आपको गुमराह ना करें, क्योंकि वो ताकतवर होने के बावजूद तुमसे कमज़ोर है, वो ताकतवर होने के बावजूद भी तुमसे कमज़ोर है। अब आइए, इमाम फरमाते हैं कसरत बुराई के बावजूद वो तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम उसे पहुंचा सकते हो। यानी इमाम फरमाते हैं कि कसरत गुनाह की वजह से भी, यानी वो कसरत गुनाह के बावजूद होने की वजह से भी तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। अब आइए, वो चीज़ क्या चीज़ है, बशर्त ये कि इमाम ने फरमाया, यानी मेरा सवाल जहन में आया, सवाल क्या है, शैतान का मुकाबला करें, यानी इमाम ने पहला ये बताया कि उससे शदीद दुश्मनी करो, एक फिर कहा कि वो भी जद्दोजहद कर रहा है तुम्हें बहकाने के लिए, आज अगर से वो ताकतवर है लेकिन ताकतवर तुम ज़्यादा ताकतवर हो। अब उसके बाद इमाम ने फरमाया जितना तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो, फिर इमाम ने बशर्त तुम उसे किस सूरत में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, कौन सी वो चीज़ है तुम्हारे पास, वो कौन सा हरबा है, वो क्या है। अब इमाम ने फरमाया खुदावंद मुताल से तुम्हारा राबता मजबूत होना चाहिए, अल्लाह से इर्तबात मोहकम हो। अगर अल्लाह से इर्तबात आपका मोहकम है तो शैतान आपको नहीं बहका सकता। अब आपको ये देखना कि आपका अल्लाह से इर्तबात कितना है। अब इसकी मैं मिसाल दे दूं, देखें शैतान जो सूर नास के आप तफसीरात में जाएं, तफसीर वगैरह का मुताला करें तो उसमें आपको मिलेगा खन्नास जो वसवसा डालता है ना, वसवसा क्या होता है, वसवसा इंसान खन्नास वसवसा डालता है ना, अब ये वसवसा शैतान भी डाल सकता है और कोई दूसरा शख्स भी, यानी ख्यालात का डालना, यानी गैर महसूस ख्यालात का डालना, वसवसा कहते हैं गैर महसूस तरीके से। अब शैतान आपको, या आप अगर अलर्ट है, जिसे हम कहते हैं ना अलर्ट रहना, ज़रा सा भी किसी ने आपसे आके कहा कि हाँ आप ऐसा करें ये काम करें, क्या फ़र्क पड़ता है, गुनाही तो है, छोटा गुनाह करने क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा अल्लाह आपको इस गुनाह से जो है वो अदाब दे देगा, कहते हैं लोग कि अगर आप ये छोटा गुनाह अंजाम दे दें तो कौन सा आपको अल्लाह अदाब दे देगा, तौबा कर लेंगे इस्तफार कर लेंगे। तो ये जो अगर कोई आपसे आके कह रहा है इसका मतलब क्या है, शैतान, बस यही शैतान है जो बस वसा डाल रहा है, ये शैतान है जो गुमराह की तरफ आपको कोशिश कर रहा है कि आप गुमराह की तरफ आ जाए। मैंने कहा कभी कभी इंसान के दिल में खुद ही ख्याल आएगा कि ये काम मैं कर लूँ, हो सकता है वो गुनाह हो, तो ये वसवसा शैतान की, और दूसरी तरफ हो सकता है कोई इंसान जिससे आप मशवरा करना समझ रहे हैं कि इससे मैं मशवरा करूँ, ये अच्छा मशवरा देगा, हो सकता है कि ऐसा मशवरा हो जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए, समझ जाए कि ये भी शैतान के। अब पाँचवीं चीज़ क्या बन गई, शैतान के मुकाबले के लिए पाँचवीं चीज़ क्या बन रही, अल्लाह से इर्तबा। अब ये भी मुमकिन है सवाल आएगा, मौलाना अल्लाह से इर्तबात कैसे करें, ये एक सवाल है, इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे, लेकिन अल्लाह से इंसान का इर्तबात होना चाहिए। अच्छा, इर्तबात के लिए आप देखिए तमाम वाजिब, एक खुलासा बता देता हूँ, तमाम वाजिबात की अदाई की, जो चीज़ें अल्लाह ने कही हैं अल्लाह से अपने इर्तबात को मजबूत रखें, तमाम वाजिबात की अदाई। और पहले भी मैंने मुख्तलिफ क्लासों में भी कहा कि बहुत सी वाजिबात अगर मुमकिन है इंसान को मालूम नहीं है तो वो मालूम, ऐसा ना हो कि 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद पता चला अच्छा ये भी वाजिब था, अच्छा ये भी हराम था, ये ना हो, उसका नतीजा क्या होगा, कि अगर बहुत से वाजिबात अगर आपके इल्म में नहीं है, अगर वो आपसे छूट रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो मंजिल, कमाल की मंजिल तक इंसान को जहाँ पहुँचना वह इंसान नहीं पहुँच रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं छठी चीज़ पर। पांच चीज़ें हमने बयान की, छठी चीज़ क्या है? छठी चीज़ एक है, अब वो इसी पांचवी जिसके जिम्मे ही है। देखिए, ये एक शैतान का एक हरबा क्या है? शैतान का एक हरबा ये है कि वो आपको, आपके यानी लंबी लंबी आरजुएं, वादे जिसे हम कहते हैं वादा, आपको वादा कराएगा, लंबी लंबी आरजुएं, लंबी लंबी उम्मीदें, ये एक शैतान का हरबा है। लंबी लंबी आरजू कराना, वादे, लंबे लंबे वादे, इंसान ख्याल करे कि अच्छा मैं ये कर लूँगा, अच्छा मैं ये कर लूँगा, इस तरह आरजू, ये तमाम चीज़ें जो है ये शैतान का एक हरबा है। इसके जवाब, ये हरबा इसका ये पूरी एक रवायत है, नूरुस किताब का नाम है नूरुस सकलैन, तफसीर की किताब है नूरुस सकलैन में आपको, या सूरह नास की जब तफसीर में जाएंगे तो वहीं आपको ये रवायत मिल जाएगी कि जब ये आयत नाजिल हुई, आले इमरान की आयत नंबर 135, जब ये आयत नाजिल हुई, कौन सी आयत? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाहा फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, जब ये आयत नाजिल हुई कि वो लोग जो इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब वो बुरे काम अंजाम देते हैं, फिर दूसरा क्या कहते हैं, औ ज़लमू अन्फुसहुम, और अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं, दो चीज़ें, क्या कहा कुरान ने? वो अफराद जो बुरे काम अंजाम देते हैं, या दूसरा काम क्या करते हैं? अपने जुल्म करते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं? फिर कुरान ने कहा, फिर वो लोग क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और उसके बाद इस्तग़फ़ार करते हैं अपने गुनाह से। दो काम, ये काम भी करते हैं। कुरान ने ये वाज़े किया कि ये जब वो लोग, कुछ लोग बोलो वल्लज़ीना, ने वो अफराद कि वो लोग जब बुरे काम अंजाम देते हैं और जब अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं, उसके बाद उन्हें ये इस बात का, यानी मैं अपने अल्फाज में समझाऊं कि उन्हें इस बात का जब एहसास होता है कि काम हमने गलत किया है तो फिर क्या करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र। ये देखिए, ये बहुत मुहिम चीज़ है अल्लाह का जिक्र। सूरह नास मैंने अर्ज़ किया कि जब आप इसकी तफसीरात में जाएंगी तो वहाँ पर बाज़ लोगों ने खुलासा लिखा है, एक किताब का नाम है ज़ाद हयात, दो जल्दी किताब है, दो जल्दी ज़ाद हयात, उन्हें पूरे कुरान के सूरों का खुलासा लिखा है, यानी कुरान में कौन, हर सूरे में कौन कौन से मौजूआत हैं और उसकी तशरीह, मुख्तसर तशरीह लिखी है और उस सूरे की खसूसियात लिखी है। वहाँ पर उन्होंने सूरह नास के अंदर ये लिखा है कि जब इंसान को वसवसा आता है, जब इंसान को शैतान वसवसा करता है, कोई गुमराह करता है, तो उसका इलाज क्या है? फिर ये सवाल है या नहीं है? आप में से किसी ने पूछा नहीं कि मौलाना अगर वसवसा हो, कोई गुमराह करे, तो उसका क्या इलाज क्या है? वहां पर उन्होंने उसका इलाज लिखा है कि अल्लाह का जिक्र, बेहतरीन जिक्र है वहां पर, यानी बेहतरीन इलाज क्या है? अल्लाह का जिक्र। अब आइए रवायत, तो कुरान आयत थी, अब आइए रवायत। जब ये आयत नाजिल हुई तो कहते हैं कि इबलीस ने अपने तमाम चेलों को बुलाया, एक मक्का में एक पहाड़ के ऊपर सबको जमा किया और उसके बाद कहा कि भाई ये आयत नाजिल हो गई है, हम तो गुनाह कराते हैं लोगों से, ये अपने नफ्सों पे जुल्म भी करते हैं, लेकिन अब ये अल्लाह का जिक्र भी कर लेते हैं, जब ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेंगे, तो फिर हमारा काम तो ख़राब हो गया सारा। ये मैं अपने अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, ये रवायत मफहूम रवायत। अब उसने कहा करें क्या इनको, इनके साथ यानी इन मुसलमानों के साथ जो अल्लाह पर ईमान लाए, इनको तो हमें बहकाना है, अब ये आयत नाजिल होगी क्या करें? तो एक ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, अपनी एक तरकीब दी से कि मैं इनको ऐसे बहकाऊंगा, ऐसे बहकाऊंगा। उसने कहा नहीं, ये काम नहीं चलेगा। इस तरह पहले ने, दूसरे ने, तीसरे, उसमें से खन्नास जो था, अब सुनिएगा, खन्नास जो था उसने कहा मेरे पास एक तरकीब है। देखा, वो क्या तरकीब है तुम्हारे पास? अब उसने तरकीब देखी, क्या बयान की, उसने कहा मेरे पास एक तरकीब है कि मैं क्या करूँगा, पूछा उसने, इसने कहा कि मैं इनसे वादे करूंगा, नंबर एक, नंबर एक क्या करूंगा, नंबर दो इन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा, आरजू, लंबी लंबी उम्मीदें, वाक्य सुना है ना उम्मीद पर, आपने नहीं सुना? हज्जाज इब्ने यूसुफ वाला जी, नहीं सुना जी? जी नहीं, वो नहीं, वो हिर्स वाला है, वो हिर्स वाला है। इन्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा और वो ताकि गुनाह में पड़ जाए। अब लंबी लंबी उम्मीदें आरजू क्या है, इसको मैं एक वाक्य में आपको, हज्जाज इब्ने यूसुफ एक जालिम बादशाह था। उसके ज़माने में तारीख ने एक वाक्य लिखा है कि उसने ये ख्याल किया कि मैं अपने रियाए के साथ जो है अपना लिबास तब्दील करके जरा देखूँ कि लोग बादशाह के मुतालिक क्या राय रखते हैं। और एक मरतबा वो एक जगह से गुजर रहा था, रात का वक्त एक जगह से गुजर रहा था, तो उसने क्या देखा कि एक दूध वाला जो एक ज़र्फ में दूध उसने सामने रखा हुआ, एक ज़र्फ के अंदर दूध है सामने रखा, और अपने ख्याल में लंबी लंबी उम्मीदें, जिसे हम उम्मीदें कहते हैं ना, आरजू है वो। आप सोचें क्या इसको, इस वाक्य से वाजे होगा कि आरजू किसे कहते हैं, लंबी लंबी प्लान जिसे हम कहते हैं ना, ख्याली प्लान। अब दूध को सामने रख के वो क्या कह रहा है कि इस दूध को मैं बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, तो मैं उससे बकरियां लूंगा, फिर बकरियों का दूध बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा नफा होगा, तो मैं गाय लूंगा, जब गाय से दूध का प्रॉफिट होगा तो मैं भैंसे लूंगा, जब मैं भैंसे लूंगा तो उसको मैं क्रॉबर करते करते मैं मालदार बन जाऊंगा, जब मैं मालदार बन जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मैं हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास जाऊंगा और हज्जाज से कहूंगा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करो, और हज्जाज के पास कोई चारा नहीं होगा इसलिए कि मैं मालदार हूं, मैं दौलतमंद हूं। तो जब हज्जाज अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करेगा और उसकी बेटी जब मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसे लात मारूंगा, जब लात मारी तो जो बर्तन में दूध रखा था वो सारा सारा। ये है लंबी लंबी आरजू है उसका नतीजा। फिर तारीख में लिखा है कि हज्जाज ने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे कोड़े वोड़े भी लगवाए, इस बात के ऊपर लगवाए कि तुम इस ख्याल में लगवाए कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, इस बात के ऊपर उस पर कोड़ी भी लगवा उसे। खैर, हमारा मौजू यहाँ पर यह था कि यह है लंबी लंबी आरजू जो शैतान इंसान को जो कहते हैं ना लालच दिलाता है, लंबी लंबी आरजू वादे, ये क्या है, वो ये मवारिद। जब ये आयत नाजिल हुई तो जब सब परेशान हो गए, उसके बाद खन्नास ने क्या कहा, ये काम मैं करूँगा। अब उसने क्या काम किया, उसने कहा मैं वादे, इनसे वादे कराऊंगा, इन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा ताकि वो गुनाह में पड़ जाएं, जब वो गुनाह में पड़ जाएंगे तो फिर क्या करूंगा मैं, तो मैं इन्हें अस्तगफार बुला दूंगा, ताकि अस्तगफार बुला दूंगा। शैतान का एक हरबा क्या हुआ, अस्तगफार बुला देना, तौबा और अस्तगफार बुला दूंगा, यानी ये इस बात के ऊपर है कि मैं कहूंगा कि अस्तगफार बुला दूंगा। यानी आप देखिए कितने ऐसे अफराद आपको आज मिलेंगे माशरे में कि तौबा इस्तगफार उनके पास से भी नहीं है, इतने गुनाह कर लिए, इतनी उम्मीदें, इतने आरजू और इतने हैं कि तौबा इस्तगफार कभी सोचते नहीं कि हम तौबा भी करें कि हमने ये गुनाह अंजाम दिए, इसलिए कि शैतान ने उनको बुला दिया। तो शैतान का एक काम क्या हुआ, हाँ लंबी उम्मीदें दिलाना, वादे दिलाना, और इस्तगफार को बुला। अब हमारा क्या काम है इसमें, जिक्र खुदा करना और तौबा इस्तगफार को याद रखना, जिक्र खुदा भी तौबा इस्तगफार भी। यानी शैतान के मुकाबले में एक चीज़ और आ गई, वो क्या है, इस्तगफार और जिक्र इलाही। तो अब आप देखें शैतान क्या काम करेगा, वो उसे खुद बता दिया, आप देखें उसे खुद बता दिया कि भाई मैं ये काम करूंगा, और उस वक्त बाद इबलीस ने उससे कहा, खन्ना से कहा, बिल्कुल ठीक है, ये फैसला सही है तुम्हारा। अब उसके बाद उसकी जिम्मेदारी दे दी, उसको ये काम सौंप दिया कि अब तुमने काम ये करना है कि जो लोग अगर अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस्तगफार करते हैं, तुम्हारा काम क्या है कि इस्तगफार इनसे बुलाओ, लंबी लंबी उम्मीदें दिलाओ, वादे दिलाओ, और इसके बाद उनसे जब वो गुनाह में पड़ जाएंगे तो उसके बाद तौबा इस्तगफार भूल जाए। यह कौन सा नुक्ता हो गया हमारा, छठा नुक्ता। अब आते हैं सातवें नुक्ते पर। सातवां नुक्ता यह है, शैतान इंसान से कैसे वसवसा डालता है। अच्छा, हाँ, अब इंसान को ये समझना चाहिए। यहां पर एक तारीख में एक वाक्या लिखा है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक्य है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शाम में एक पहाड़ पर चढ़े थे, तो इनके पास फलस्तीन यानी शैतान आया किस रूप में, फलस्तीन के बादशाह की सूरत पे इनके पास इबलीस आया। और उसके बाद आके उसने क्या कहा, आ के कहने लगा ए रूहल्ला आप मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो मादाजात बीमार होते हैं, जो माँ के शिकम से जो पैदा होते हैं, जो मरीज होते हैं उनको आप शफा देते हैं, कोड़ियों के जो बीमार उनको भी आप शफा देते हैं, जरा आप अपने आप को इस पहाड़ से नीचे तो गिरा के देखिए। अब आप देखिए शैतान जनाब ईसा के पास आया है, नबी है, तो आप सोचे जब नबियों के पास आया है तो हमारे पास, और एक नबी नहीं जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब जकरिया, जनाब इब्राहिम, है ना, और आके उनको कोशिशें की उसने, हत्ता पैगंबर के पास भी इंटरव्यू है, पैगंबर से जो सवाल और जवाब है वो भी बहुत पहले पढ़े गए कि पैगंबर ने शैतान से पूछा तू किस तरह बहकाता है, तो उसने उन तमाम सवाल के जवाब दिए, बहुत लंबी रवायत है, तोलानी रवायत है वो। अब देखिए ये भी एक शैतान का तरीक़ेकार है, कहा आप इतनी फजीलत वाले हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज में आप बयान करूँ कि आप इतनी फजीलत वाले हैं, आपका इतना मकाम है कि आप रूह अल्लाह हैं, आप मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शफा देते हैं, तो ये सब काम तो आप करते ही हैं, तो आप अपने आप को ज़रा वो पहाड़ से नीचे गिरा के देखिए कि आपको अल्लाह आपको बचाता है नहीं बचाता। तो ये यानी ये एक वहम है, वसवसा जिसे कहते हैं, कभी इंसान के आदमी कभी हो सकता है कि कोई शख्सियत आप में सब में से एक मकाम तक परवरदिगार पहुंचा दे, फिर हम सोचें कि हम अल्लाह को देखें, अल्लाह हमें ये काम तो अल्लाह को देखते हैं कि ये काम अल्लाह कर सकता है नहीं कर सकता। अब देखिए इमाम ने यानी जनाब ईसा ने जवाब क्या दिया, ये दो रवायतों के दो जवाब हैं, एक इस रवायत में एक दूसरे रवायत में, जनाब ईसा ने अब इसको जवाब क्या दिया, ये सवाल है कि ये तो शैतान ने कहा, ईसा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, मुझे इनकी कहा मुझे इन बातों की इजाज़त है जो काम मैंने किए इसकी मुझे अल्लाह की तरफ इजाज़त है, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं कि मैं ये काम करूँ, यानी पहाड़ से नीचे कूद जाओ, कहा मुझे इसकी एक बिल्कुल सादा और सिंपल जवाब जिसे हम कहते हैं, कहा जो काम मैं करता हूँ अल्लाह की सत्य, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये इजाज़त नहीं दी कि मैं आप तो, एक और रवायत में एक जुमला है जिससे यही इसी यानी इसी से मिलता जुलता रवायत यही, और जुमला दूसरा ये है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया जवाब देकर बंदे को अपने रब को आजमाना नहीं चाहिए, ये दूसरा जुमला, यानी कभी ये नहीं कि खुदा से आप कहें परवरदिगार तू तो इतना करने वाला, मैं प्लाजा से छलांग लगा दूँ, परवरदिगार तू मुझे खुदा तू मुझे बचाता है नहीं बचाता था, मैं भी तो देखूँ तू तो इतना तूने मतलब कोई जैसे भी मिसाल के तौर पर कोई जहाज क्रैश हुआ कोई बच गया, बहुत से वाकयात हुए थे भी, तो यानी खुदा की कुदरत थी कि उसे बचा लिया, कितने लोग 200 आदमी के जहाज में मतलब 199 मर गए, 198 मर गए, दो आदमी बच गए, एक आदमी बच गया, ये खुदा की कुदरत थी पता। अब आपने कहा खुदा तू उस जहाज में जो क्रैश हुआ उसमें तू लोगों को बचा सकता, मैं प्लाजा से छलांग लगाऊँ मुझे बचा सकता नहीं बचा सकता, चलो मैं ये काम करने की इजाज़त नहीं। इसके दो जवाब हैं, एक तो इजाज़त नहीं, दूसरा क्या कि कभी अपने रब को आजमाना नहीं चाहिए। तो हमारा सातवां नुक्ता क्या बना, इंसान को समझना चाहिए अपने रब को, मत अपने रब को ना आजमाए, और जो अल्लाह ने उसे कुदरत दी है, जो कमालात अल्लाह ने उसे दिए हैं, यानी आप इसको यूं लिखें जो कमालात अल्लाह ने उसे दिए, तो अल्लाह ने जो कमालात दिए उन्हीं कमालात की इजाज़त है उससे ज़्यादा की, और वो काम जो शरण सही नहीं है उसकी इजाज़त नहीं। ये इंसान को समझना है, इसका इसका इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि इंसान को समझना है कि कहाँ मुझे इजाज़त और कहाँ इजाज़त नहीं है, यह इंसान को समझना है कि वसवसा शैतानी कहाँ पर आ रहा है और वसवसा शैतानी कहाँ पर नहीं आ रहा, यह इंसान को समझना है। अब आ जाइए नंबर आठ में है खुदावंद आलम के जरिए, यानी ये भी एक रवायत है मासूम बिहार अनवर की रवायत है, इसमें मासूम फरमाते हैं कि शैतान के हरबे से अगर इंसान को बचना है तो एक चीज़ है उसका नाम है खौफ खुदा, वो इंसान के पास हो, यानी खौफ खुदा आपको शैतान के हरबों से बचाने वाली, सच बशर्ते खौफ खुदा कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ऐसा खौफ खुदा हो कि इंसान खुदा का खौफ करे, सही मानों का अगर खौफ खुदा होगा तो इंसान जो है वो शैतान के हरबों से बचेगा। खुदावंदा अगर कि शैतान तनाई में कोई नहीं देख रहा, खुदा ना खासा इंसान को ऐसा मौका मिल रहा है कि इंसान गुनाह करना, कोई नहीं देख रहा, कोई इंसान गुनाह करने का मौका मिल रहा है तो इंसान क्या कहेगा, परवरदिगार तू खुदा है, तेरा खौफ, तेरे खौफ से मैं गुनाह नहीं कर रहा। ये अगर खौफ ऐसा सच्चा खौफ होना चाहिए। अब इसकी मिसालें नहीं दे रहा, वरना इसकी मिसालें बहुत सारी मिसालें भी वाक़यात की रोशनी में भी हैं, तारीख में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, और कभी कभी बहुत सी मिसालें आपको गैर मुस्लिम में भी नज़र आएंगे। देखिए बास वाक़यात तारीख के ऐसे हैं, किताब ईमान में आयतुल्लाह दस्ते गैब ने भी लिखे हैं और भी किताबों में वाक़यात लिखे हैं, आयतुल्लाह दस्ते गैब ने भी लिखे अपनी किताब ईमान में भी लिखे हैं मुख्तलिफ किताबों में, कि बास लोग मुसलमान नहीं थे लेकिन वो जिस खुदा को मानते थे, जिस खुदा को भी मानते थे, मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह दस्ते गैब ने अपनी किताब में कहीं ये वाक़या लिखा है कि एक शख्स था टूरिस्ट, मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने वाला, घूमने फिरने वाला, कहता वो शिराज, ईरान का एक शहर है, शिराज के एक बाज़ार में उसने एक मंज़र देखा। क्या देखा कि एक शख्स है जो गोश्त बेच रहा है, लेकिन गोश्त देने यानी गोश्त ग्राहक को देने से पहले वो एक अमल करता था, एक लम्हे का अमल था। वो लम्हे का अमल क्या था, यानी ग्राहक खड़ा है, गोश्त तोला, ऊपर देखा, ग्राहक को गोश्त दे दिया, उससे ऊपर देखता था, बस ऊपर देखता था, और पता कितना है इसमें, कितना शायद एक लम्हा देखा दे दिया। तो इस शख्स ने जो दुनिया घूम रहा था, जो जहाँ तक पहुँचा, दुनिया घूमते घूमते ये ईरान पहुँचा, ईरान में शिराज पहुँचा, शिराज के बाज़ार में देखते थे जो लोग होते हैं बाज़ार, यूनिक चीज़ें खरीदने वाले होते हैं, दुनिया घूमते रहते हैं। अब ये जब बाज़ार में पहुँचा, इसने ये देखा तो इसने कहा कि क्या वजह है कि तुम, मैंने कहा, मैंने उसने कहा, मैंने नोट किया इस बात को कि तुम ग्राहक को गोश्त देने से पहले ऊपर देखते हो फिर देते हो, उसकी क्या वजह, उसने बहुत टाला, नहीं बताया, बहुत टाला। उसने कहा जब तक बताओगे नहीं यहाँ से जाऊँगा नहीं। अब उसने जो जवाब दिया वो जवाब क्या दिया, उसने कहा कि मैं बुत परस्त हूँ, कहा मैं बुत परस्त हूँ और मैंने अपनी दुकान में एक बुत रखा ऊपर, और मैं अपने खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, खुदा बंदा जो भी, मैंने कहा जो भी खुदा, उसको उसका खुदा क्या है, बहुत का खुदा, तू गवाह रहना मैं इस ग्राहक को कम नहीं देगा, यानी हिंदू है, बुत परस्त है, लेकिन पैगाम क्या दिया कि खुदा को मानना है तो ऐसे मान ले हर काम के अंदर। ये तो एक मिसाल कहा कि गोश्त देने की, आप अपनी जिंदगी में हर काम में के परवरदिगार गवाह रहना ये काम मैं कर रहा हूं, आप देखिए अपनी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। क्यों कि खुदा को हकीकी मानों में मानना है, खुदा का खौफ हकीकी मानों में खौफ खुदा का रखेंगे जब जाके शैतान के मुकाबला कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। क्यों हम कमालात तक नहीं पहुंचते, क्यों हम उस रूहानी मकाम तक नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंचते हैं, उसकी वजह यह कि हम कदम कदम पे वो मुकाबला नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं नमाज हमारी मुकम्मल है, मुकम्मल से मुराद वाजिबात की अदायगी, मसलन वाजिबात की अदायगी है, नमाज भी है, ज़ियारत भी है, रोज़े भी हैं, हर चीज़ें, लेकिन ज़िंदगी के दूसरे मराहिल हैं जहाँ पर हो सकता है कि हम उन तमाम चीज़ों का अंजाम वाजिबात की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन अगर हराम से नहीं बच रहे तो वो कमालात पर हम तक नहीं आते। कमाल इंसान उसी सूरत में हासिल करेगा कि वाजिबात के बाद मुस्तहबात, फिर मुस्तहबात के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यानी बाद पुराने जो उल्मा के वाक़यात में क्या है, अल्लामा हिल्ली का वाक़या है ना गालिबन, कि जब उनको तकरीर कराने ले गए, जब उनको तकरीर कराने अल्लामा हिल्ली के हिल्ला में रहते थे, अल्लामा हिल्ली उनके वालिद के पास लोग आए और कहा कि इनसे, अपने बेटे से कहा कि हमें दर्श के लिए चाहिए एक फ़र्द, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे बेटे को ले जाओ अल्लामा हिल्ली को भेज दें, मैं बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, जो असल चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि देखें वाजिबात के बाद मुस्तहबात के बाद इंसान कहाँ तक एहतियात करता है तब जाके उसका मारा तक पहुँचता है। जब कहते हैं कि वो पहुँचे दर्श देने के लिए, पहुँचे मिंबर पर जाते थे कुछ बोलते नहीं थे, उतर के पहुँच पर, दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी यही, तो उन्होंने बोला भाई मौलाना को लाए थे दर्श देने के लिए, ये जाते हैं मिंबर पर कुछ बोलते नहीं है, उतर जाते हैं। तो इनके वालिद के पास गए, किसके पास गए, वालिद पास, वालिद साहब ने क्या जवाब दिया जानते हैं, क्या कहा वालिद ने, हैं कुछ खिला दो, हाँ कहा इनकी दावत करो, कुछ खिलाओ पिलाओ फिर बोलेगा, जब खिलाया पिलाया तो फिर बोलना शुरू किया। तो उन्हें ताज्जुब, और लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये क्या माजरा है। तो क्या जवाब दिया अल्लामा इल्ली के वालिद के बाद, तो क्या जवाब दिया उन्होंने, कहा कि इसके शिकम में, हराम तो छोड़ो, हराम तो छोड़ो, जिस चीज़ के बारे में अगर ये शक था ना कि ये पाक है नजीस है, मसलन ये हलाल है हराम है, मसलन हलाल है हराम है, शक था तब भी मैंने ये, तब भी वो चीज़ इसने नहीं खा। अब आप सोचिए कि कितने, कितनी एहतियात उन्होंने की होगी, पूरी जिंदगी किस तरह अपने बेटे को उन्होंने तरबियत की होगी कि इस मकाम तक पहुंचे, और वजह क्या थी, क्या देखते थे वो हैं, नहीं वो मिंबर पर जब जाते थे कुछ देखते नहीं थे, हाँ यानी इंसान की वो हकीकी शक्ल देखते थे, वो जानवर कहते थे मिंबर जो जाते थे। अब ये वाक्या जब सुनाया तो एक वाक्या और मिंबर का याद आ गया मुझे, वो वाक्या है कालिम का है, क्या नाम है उनका, ख्वाजा नसीरुद्दीन है ना, वाक्य मेंबर का सुना हुआ है आपने, नहीं सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ। ख्वाजा नसीरुद्दीन चुशी को मेंबर पर ले आ गए, लोगों ने कहा इनसे तो तकरीर करवानी पड़ेगी, और जाके इनको मेंबर पर बिठा दिया। अभी मेंबर पर बैठ तो गए, क्या पढ़े, अब तमाम मजमे से मुखातिब होकर कह रहे हैं आज जानते हो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, सब ने कहा हमें क्या पता आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो कहने लगे कि ऐसे जाहिल मजमे के सामने क्या पढ़ना जिसे कुछ पता ही ना, ये कह के उतर गए। अब लोग परेशान हो गए यार इन्होंने कुछ पढ़ा तो नहीं, दूसरे दिन फिर इनको ज़बरदस्ती बिठाया, तो लोगों ने कहा कि ऐसा करेंगे हम कहेंगे हमें पता है, हम कहेंगे हमें पता है, फिर पूछा मजमे से आज मालूम है क्या पढ़ना, सबने कहा हमें पता है, तो क्या जवाब दिया, जब सारे मजमे के इल्म तो मैं क्या पढ़ूँ उसमें, सबको पता ही, तो फिर मैं क्या पढ़ू, ये कहकर उतर आए। अब लोगों ने कहा मौलाना फिर भी कुछ नहीं पढ़ा, तुसी ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर ज़बरदस्ती बिठाया, और आधे मजमे ने कहा हम कहेंगे हमें पता, और आधे ने कहा हम कहेंगे नहीं पता।